दोपहर ढलने लगी थी। हवेली के बाहर धूल उड़ाती हुई एक बड़ी सी काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी का इंजन बंद हुआ और कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर दरवाज़ा खुला। सबसे पहले उतरी रत्ना देवी, सफ़ेद बालों में सजी सादगी, लेकिन चाल में अब भी वही रौब। उनके पीछे शकुंतला, चेहरे पर हल्की चिंता और जिज्ञासा दोनों, और आखिर में वीरेंद्र, गंभीर, कम बोलने वाला लेकिन हर चीज़ को गौर से देखने वाला इंसान। तीनों ने एक साथ हवेली की तरफ देखा। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट और भीतर की गहराई, जैसे हर चीज़ अपने अंदर कोई कहानी छुपाए बैठी हो। चलो, रत्ना देवी ने धीरे से कहा। गेट खुला और तीनों अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उनके कदम हवेली के आंगन में पड़े, अंदर पहले से मौजूद लोगों को खबर हो चुकी थी। अविनाश, सुजीत, सुप्रिया और नंदिनी चारों एकदम तैयार खड़े थे, चेहरों पर बनावटी मुस्कान, आवाज़ में ज़रूरत से ज़्यादा मिठास। अरे आइए आइए, अविनाश सबसे आगे बढ़ा। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। सुप्रिया तुरंत आगे आई। नमस्ते मौसी जी, नमस्ते दीदी। उसने झुककर पैर छुए और फिर तुरंत नौकर की तरफ मुड़ी। अरे सुनो, जल्दी से पानी, चाय, नाश्ता लेकर आओ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। नंदिनी भी पीछे नहीं रही। इतनी दूर से आए हैं आप लोग, थक गए होंगे, बैठिए ना। सब कुछ इतना परफेक्ट दिखाने की कोशिश हो रही थी कि वो नकलीपन साफ छलक रहा था। वीरेंद्र चुपचाप सब देख रहा था। उसकी नज़रें एक एक चेहरे को पड़ रही थीं। शकुंतला ने भी हल्की सी नज़र घुमाई और उसके मन में एक सवाल उठने लगा, इतनी मिठास या कुछ ज़्यादा ही। तभी रत्ना देवी ने चारों तरफ नज़र घुमाई और सीधे पूछा, दीदी कहाँ हैं? उनकी आवाज़ में बेसब्री थी और सच्चा अपनापन भी। सुप्रिया एक पल को अटकी, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। मौसी जी, वो कमरे में हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम उन्हें कोई काम नहीं करने देते, बस आराम करने को कहते हैं। नंदिनी ने भी बात को आगे बढ़ाया। हाँ, अब उनकी उम्र हो गई है तो हम चाहते हैं कि वो बस आराम करें। दोनों की आवाज़ में मिठास थी, लेकिन आंखों में हल्की घबराहट भी। रत्ना देवी के चेहरे पर संतोष आया। अच्छा है, उन्होंने सिर हिलाया। दीदी बता रही थी तुम लोग उनका कितना ख्याल रखते हो। उनकी आवाज़ में गर्व था। ऐसे ही हमेशा रहना। ये सुनते ही चारों के चेहरों पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन तुरंत उन्होंने फिर वही नकली मुस्कान ओढ़ ली। जी बिल्कुल, अविनाश बोला, हम तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। रत्ना देवी ने मुस्कुराकर कहा, चलो मुझे उनके पास ले चलो, बहुत दिन हो गए मिले। नंदिनी तुरंत आगे बढ़ी। आइए मौसी जी, मैं ले चलती हूँ। वो रत्ना देवी को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। उनके जाते ही हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अब वहाँ सिर्फ शकुंतला और वीरेंद्र खड़े थे, सामने अविनाश, सुप्रिया और सुजीत। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, बस नज़रें एक दूसरे को टटोल रही थीं। शकुंतला ने धीरे से चारों तरफ देखा। दीवारें, फर्नीचर, सजावट, सब कुछ महंगा था, पर माहौल कुछ अलग ही कह रहा था। उसकी नज़र अचानक एक कोने पर गई, जहां फर्श पर बहुत हल्का सा निशान था, जैसे कुछ टूटकर साफ किया गया हो। उसके मन में हल्की सी चुभन हुई। कुछ तो है जो दिख नहीं रहा, उसने मन ही मन सोचा। उधर सुप्रिया ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बैठिए ना, मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में वो सहजता नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वीरेंद्र ने कुर्सी पर बैठते हुए धीमे स्वर में कहा, हाँ धन्यवाद। लेकिन उसकी आंखें अब भी कमरे का जायज़ा ले रही थीं। सुजीत ने बात संभालने की कोशिश की, काम धंधा कैसा चल रहा है दामाद जी? उसने सामान्य बनने की कोशिश की। ठीक है, वीरेंद्र ने छोटा सा जवाब दिया, फिर चुप। शकुंतला अब भी खड़ी थी। उसने बैठने से पहले एक बार फिर सबको देखा। उसके मन में सवाल और गहरे होते जा रहे थे। अगर सब ठीक है तो ये बेचैनी क्यों, ये नकली मुस्कान क्यों? उसने हल्के से खुद को संभाला और बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक सतर्कता आ चुकी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस हवेली में जो दिख रहा है असल में वो नहीं है। उधर नंदिनी रत्ना देवी को लेकर सुषमा देवी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। बस माँ कुछ गलत ना बोलते, वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा हल्के से खोला। माँ देखिए कौन आया है। अंदर सुषमा देवी आईने के सामने खड़ी थी, धानी की दी हुई साड़ी पहने हुए। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, लेकिन आवाज़ सुनते ही उन्होंने धीरे से मुड़कर देखा, और जैसे ही उनकी नज़र रत्ना देवी पर पड़ी उनकी आंखें फैल गईं। रत्ना, उनकी आवाज़ कांप गई। अगले ही पल दोनों बहनें एक दूसरे के सामने थीं। एक पल में खत्म हो गया। रत्ना देवी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। सुषमा देवी भी खुद को रोक नहीं पाई, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तू आ गई, उन्होंने भरे गले से कहा। कमरे में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन नंदिनी दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में डर, क्योंकि उसे पता था ये मिलन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। उधर हॉल में बैठी शकुंतला अब भी चुप थी। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जहाँ से नंदिनी और रत्ना देवी गई थी। उसने धीरे से सोचा, कुछ तो गड़बड़ है और ये बात मैं पता लगा कर ही रहूंगी।
जहां बाहर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर सच धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा था। उधर हवेली के बाहर अचानक गेट खुलने की आवाज आई। कुछ ही पल बाद धानी और वरुण तेजी से अंदर आते दिखे, जैसे कहीं से जल्दी जल्दी लौटे हों। अरे जल्दी चल, धानी ने हाँफते हुए कहा, मुझे लगा मेहमान आ गए होंगे। दोनों सीधे हॉल की तरफ भागे और जैसे ही उनकी नजर अंदर बैठे लोगों पर पड़ी, धानी एकदम रुक गई। उसकी आंखें चमक उठी। बुआ? अगले ही पल वो दौड़ती हुई शकुंतला के पास पहुंची और सीधे उनके गले लग गई। बुआ आप आ गई? उसकी आवाज में खुशी छलक रही थी, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। वरुण भी पीछे नहीं रहा, वो भी आकर शकुंतला से लिपट गया। बुआ हमें बताया ही नहीं। शकुंतला एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसके चेहरे पर असली मुस्कान आई। उसने दोनों बच्चों को कसकर गले लगाया। अरे मेरे बच्चों, उसने प्यार से उनके सिर सहलाए, तुम लोग तो और बड़े हो गए। लेकिन उसी पल उसकी नजर उनके चेहरों पर गई और वो हल्का सा ठिठक रही। खुशी तो थी, पर कहीं ना कहीं एक दबा हुआ दर्द भी साफ झलक रहा था, और ये देखकर शकुंतला के मन में उठ रहा शक अब और गहरा हो गया।